रीति संप्रदाय और उसके सिद्धांत। रीति के अर्थ पर विचार करते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, रीति शब्द रिंग धातु से क्विन प्रत्यय के योग से बनता है। अतः रीति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है मार्ग, पंथ, वीथि, गति, प्रस्थान, सब रीति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। उद्धरण चिन्ह बंद। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक काव्य रचना की सामान्य पद्धति, शैली आदि के अर्थ में तथा दूसरा संस्कृत के एक संप्रदाय विशेष के अर्थ में। वह संप्रदाय है आचार्य वामन नौमी शती द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय। यहाँ इस संप्रदाय विशेष के ही सिद्धांतों पर प्रकाश डालना हमारा लक्ष्य। रीति की परंपरा। यद्यपि रीति को एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य वामन को ही प्राप्त है, किंतु यह उनका सर्वथा नूतन सिद्धांत नहीं है। उनसे पूर्व भी अनेक आचार्यों ने रीति की विवेचना विभिन्न रूपों में की थी, जिसका लाभ निश्चित ही वामन ने उठाया। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में रीति से मिलते जुलते शब्द प्रवृत्ति का प्रयोग करते हुए उसके चार भेदों की व्याख्या की है। प्रत्येक देश के रहन सहन और आचार विचार में एक दूसरे से थोड़ा बहुत अंतर होता है, अतः इसी आधार पर भरत ने प्रवृत्ति के भेद निश्चित किए थे। यदि आधुनिक शब्दावली में कहें तो भरत की प्रवृत्ति स्थानीय विशेषताओं लोकल कलर्स को सूचित करती है। उन्होंने चारों भेदों का नामकरण भी भौगोलिक आधार पर किया है, आवंती, दाक्षिणात्य, गौड़, मागधी और प्रांचाल्य। सही बात तो यह है कि भरत के इस प्रवृत्ति संबंधी विवेचन का संबंध नाटकों के बाह्य उपकरणों वेशभूषादि से ही अधिक है, काव्य के आधारभूत तत्वों से कम। फिर भी इसका इतना महत्व अवश्य है कि परवर्ती आचार्यों में से भी अनेक ने भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण की परंपरा को अपनाया है। प्रवृत्ति के अतिरिक्त आचार्य भरत ने नाटक में प्रयुक्त होने वाले काव्य के गुण दोषों एवं लक्षणों की विशद व्याख्या की है। रीत सिद्धांत के आधारभूत प्रायः सही तत्व भरत के इन गुण दोषों एवं लक्षणों के अंतर्गत मिल जाते हैं, अतः कहना चाहिए कि रीति की परंपरा आचार्य भरत से ही प्रवर्तित हो जाती है। भामह छठी शती ने अपने काव्यालंकार में वैदर्भ और गौड़ नाम से दो मार्गों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम रीति के ही पर्यायवाची मान सकते हैं। यह वर्गीकरण स्वयं भामह का किया हुआ नहीं है, अतः किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा कृत माना जा सकता है जो भरत और भामह के बीच के समय में हुआ हो। खैर, भामह के विवेचन से इतना स्पष्ट है कि उस युग में एक ओर तो इन मार्गों का महत्व बहुत अधिक था, जबकि दूसरी ओर स्वयं भामह ने इनको हेय दृष्टि से देखते हुए अलंकार विहीन वैदर्भ एवं गौड़ दोनों मार्गों को ही उपेक्षणीय बताया है। उनके शब्दों में यदि वैदर्भी में ही पुष्टार्थता न हो, वक्रोक्ति का अभाव हो, केवल प्रसादयुक्त कोमल शब्दों की सत्ता हो, तो वह केवल गान की भांति श्रुति पेशल हो सकती है, काव्यत्व तो उसमें कहाँ। भामह के अनंतर दंडी ने भी रीति के स्थान पर मार्ग का ही प्रयोग करते हुए उसके उपरुक्त दो भेदों की विवेचना की है, किंतु उनका दृष्टिकोण इनके प्रत्येक प्रति भामह की अपेक्षा अधिक सम्मानपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने न केवल वैदर्भ मार्ग को उत्तम तथा गौड़ को निकृष्ट माना है, अपितु इनके आधारभूत गुणों की भी व्याख्या की है। उनके विचार से वैदर्भ में श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, समाधि, कांति, ये 10 गुण होते हैं, जबकि इनसे विपरीत गुणों वाला मार्ग गौड़ होता है। इस प्रकार वैदर्भ में सब गुणों का संग्रह होता है, जबकि गौड़ में सब दोषों का। वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीति को इतना अधिक महत्व प्रदान किया है कि उसे काव्य की आत्मा तक घोषित कर बैठे। रीति का लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की शब्द रचना ही रीति है। वह विशेष प्रकार या शब्द रचना की वह विशेषता क्या है जिससे रीति का संपादन होता है? उसका उत्तर है विशेषो गुणात्मा, अर्थात गुण का होना ही विशेषता है। इस प्रकार कहना चाहिए कि वामन काव्य का आधार रीति को तथा रीति का आधार गुण को मानते हैं, अतः गुण ही काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व सिद्ध होता है। वामन के द्वारा प्रस्तुत गुणों की सूची भी बहुत कुछ भरत एवं दंडी की सूची से ही मिलती जुलती है, अतः इसे वामन की मौलिक देन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, वामन ने एक तो मारे के स्थान पर रीति नाम का प्रचलन किया और दूसरे उसके भेदों में भी वृद्धि की। वैदर्भी और गौड़ी के अतिरिक्त उन्होंने एक तीसरे भेद पांचाली की और कल्पना की, इसे हम अवश्य उनकी मौलिकता मान सकते हैं। वामन परवर्ती आचार्यों ने भी रीति का थोड़ा बहुत विवेचन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। रुद्रट ने वामन की तीन रीतियों के अतिरिक्त एक चौथे भेद लाठी की कल्पना की। साथ ही उन्होंने रीतियों के एक सामान्य आधार की भी उद्भावना की। उनके विचार से समास ही रीति का निर्णायक आधार है। जहाँ समास बिल्कुल न हो वह वैदर्भी, जहाँ लघु हो वहाँ पांचाली, जहाँ मध्य समास व दीर्घ समास हो वे क्रमशः लाठी व गौड़ी रीति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त किस रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होनी चाहिए इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। जैसे श्रृंगार, करुण आदि में वैदर्भी और पांचाली या रौद्र में गौड़ी प्रयुक्त होनी चाहिए। राजशेखर नौवीं शती ने प्रवृत्ति, वृत्ति एवं रीति के अंतर को स्पष्ट करते हुए पूर्व विवेचन को अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इनके पारस्परिक अंतर उनके शब्दों में इस प्रकार है। वेश विन्यास क्रम प्रवृत्ति, विलास विनाश क्रमो वृत्ति, वचन विन्यास क्रमो वृत्ति। अर्थात वेश विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति है, विलास विन्यास का प्रकार वृत्ति है तथा वचन विन्यास का प्रकार रीति है। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति का संबंध वेशभूषादि से है, वृत्ति का क्रियाकलाप व्यवहार आदि से है तथा रीति की भाषा एवं बोलचाल आदि से है। राजशेखर का यह स्पष्टीकरण निश्चित रूप से ही स्तुत्य है। रीति के भेदों के अंतर्गत राजशेखर ने रुद्रट के लाठी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैदर्भी, पांचाली एवं गौड़ी को ही मान्यता देते हुए उनका विवेचन किया है। दसवीं शती के आचार्य कुंतक ने रीति के इतिहास में एक बड़ा भारी परिवर्तन किया। अब तक रीति का संबंध प्रदेश विशेष से माना जाता रहा था, जबकि कुंतक ने इसे कवि स्वभाव से संबंधित सिद्ध किया। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने रीति के विभिन्न भेदों का नामकरण भी नए ढंग से किया। सुकुमार मार्ग वैदर्भी रीति, विचित्र मार्ग गौड़ी और मध्यम मार्ग पांचाली। कुंतक का यह प्रयास बहुत सुंदर था, किंतु परवर्ती आचार्यों ने इसकी उपेक्षा की, जिससे यह नामकरण प्रचलित न हो सका। भोजराज 11वीं शती ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी के अतिरिक्त दो और अन्य नए भेदों अवंतिका और माधगी की सृष्टि करते हुए उनकी संख्या 6 तक पहुंचा दी, किंतु परवर्ती विद्वान वामन के तीन भेदों को ही मानते रहे। आनंदवर्धन ने रीति का प्रयोग वक्ता, तथ्य, विषय एवं रस के औचित्य के अनुसार ही करने का परामर्श दिया। इस प्रकार रीति विवेचन की परंपरा 11-12वीं शती तक अक्षुण्ण रूप से चलती रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुंतक, राजशेखर, भोज आदि आचार्य रीति संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथों में रीति विवेचन को स्थान दिया। इतना ही नहीं, नैषद चरित के रचयिता श्रीहर्ष ने तो परम सुंदरी दमयंती को ही रीति विशेष का रूप दे डाला। धन्यासी वैदर्भी गुणैरुदार यया समाकृष्यत नैषोधुपि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकाया यदब्धिम प्युत्तर लीक रोती। अर्थात हे वैदर्भी दमयंती, तुम सचमुच धन्य है जिसने अपने उदार गुणों से नैषद को आकृष्ट कर लिया है। चंद्रिका की इससे बढ़कर स्तुति क्या हो सकती है कि वह समुद्र को भी अधिक तरल चंचल बना दे। इससे प्रतीत होता है कि 11वीं-12वीं शती तक रीति सिद्धांत पक्षी विपक्षियों के द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु परवर्ती युग में रस, ध्वनि और अलंकार के आगे यह गौण हो गया। यही कारण है कि हिंदी के शताधिक कवि आचार्यों रीतिकालीन में से कुछ ने ही रीति का उल्लेख किया है। केशव ने तो रीति के स्थान पर भरत की चार वृत्तियों को ही ले लिया है, जबकि चिंतामणि ने कुंतक का अनुकरण करते हुए इसे कवि स्वभाव से संबंधित रूप में ग्रहण किया है। कुलपति, देव और दास ने भी रीति का उल्लेख अत्यंत मितव्ययितापूर्वक किया है तथा उन्होंने वामन के दृष्टिकोण की प्रायः उपेक्षा की है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी के मध्यकालीन आचार्यों ने इस सिद्धांत को प्रायः ठुकरा दिया। रीति संप्रदाय का काव्य के प्रति दृष्टिकोण। रीति संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करने से पूर्व हमें उसका काव्य संबंधी दृष्टिकोण समझ लेना चाहिए। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र के प्रथम अधिकरण में ही काव्य के लक्षण, स्वरूप, प्रयोजन आदि का विवेचन किया है, जिसके आधार पर हम उनके दृष्टिकोण से अवगत हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काव्य क्या है? वामन की दृष्टि से इसका उत्तर है, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते। अर्थात यह काव्य शब्द, गुण तथा अलंकार से संस्कृत शब्द तथा अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होता है। यदि वामन के इस लक्षण की उनके पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्मित लक्षणों से तुलना करें तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि उनका लक्षण कितना अधिक व्यापक है। जहाँ भामह केवल शब्दार्थों सहित और काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होता है कहकर रह जाते हैं, वहाँ वामन गुण तथा अलंकारों से संस्कृति की भी बात कहते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द काव्य नहीं हो सकता, कुछ विशेष गुणों वाले शब्द ही मिलकर काव्य का रूप धारण कर सकते हैं। अतः स्पष्ट ही वामन के द्वारा गुण और अलंकारों की बात कहा जाना अधिक उचित प्रतीत होता है। अस्तु, यदि उपर्युक्त लक्षण की व्याख्या करें तो उससे वामन की निम्नांकित मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। काव्य में शब्द और अर्थ के संस्कृत या परिष्कृत रूप का प्रयोग होता है, या यूं कहिए कि काव्य में परिष्कृत भाषा का प्रयोग होता है। ख, भाषा में यह परिष्कार गुण और अलंकारों के द्वारा आता है। ग, वामन शब्द और अर्थ दोनों के परिष्कार की बात कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि वे काव्य के दोनों पक्षों ध्वनि और अर्थ दोनों को महत्वपूर्ण समझते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे कि क्या भाषा में परिष्कार केवल गुण और अलंकार से ही आ सकता है, अन्य साधनों से नहीं, या क्या काव्य केवल परिष्कृत या सुसज्जित भाषा में ही रचित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वामन के दृष्टिकोण से गुण और अलंकार ही काव्य के आधारभूत तत्व हैं, अतः यदि वे केवल इन्हें ही भाषा के परिष्कार का साधन माने तो स्वाभाविक ही है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी जहाँ तक वामन के दृष्टिकोण की बात है, वे केवल परिष्कृत भाषा में ही रचित काव्य को काव्य मानेंगे। वामन की यह मान्यता कहाँ तक तर्कसंगत है, इस पर हम आगे वामन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करते समय विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही याद रखना पर्याप्त होगा कि वामन के अनुसार गुण और अलंकार ही दो ऐसे तत्व हैं जिनसे परिष्कृत सुसज्जित होकर भाषा काव्य का रूप धारण करती है। काव्य के संबंध में उसके लक्षण के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि उसकी आत्मा क्या है, अर्थात वह कौन सा आधारभूत तत्व है जिसके कारण काव्य काव्य कहलाता है तथा जिसके अभाव में काव्य काव्यत्व से हीन हो जाता है। यह प्रश्न भारतीय आचार्यों में पर्याप्त वाद विवाद का विषय रहा है। आचार्य वामन ने इसके उत्तर में रीति को काव्य की आत्मा बताया, किंतु सही बात तो यह है कि उनके द्वारा विवेचित रीति अपने आप में साध्य न होकर काव्य के सौंदर्य की साधन मात्र है। वामन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उद्धरण चिन्ह काव्यम ग्राह्यम लंकरात सौंदर्यम लंकार, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ग्राह्य होता है और अलंकार का अर्थ है सौंदर्य। इस प्रकार सौंदर्य ही काव्य का मुख्य तत्व है तथा दोषों का परित्याग, गुण और अलंकारों का प्रयोग, ये सब तो सौंदर्य सृष्टि के साधन मात्र हैं। दोषों के त्याग और गुण व अलंकारों के ग्रहण का सामान्य नाम ही रीति है। अतः कहना चाहिए कि रीति तो काव्य सौंदर्य की साधन मात्र है। जिस प्रकार मनुष्य वायु जल भोजन आदि के द्वारा जीवन धारण करता है किंतु फिर भी इन्हें मनुष्य का प्राण या उसकी आत्मा नहीं माना जा सकता, ठीक वैसे ही काव्य में सौंदर्य रूपी जीवन के लिए रीति को उसका साधन ही माना जा सकता है, साध्य नहीं। अस्तु, वामन ने एक ओर रीति को काव्य की आत्मा घोषित करके तथा दूसरी ओर सौंदर्य को ही उसका साध्य मान करके दो परस्पर विरोधी मान्यताएं व्यक्त की हैं जिनसे उनके दृष्टिकोण की अस्पष्टता प्रकट होती है। इसी प्रकार काव्य के प्रयोजन के संबंध में भी वामन ने अपना मत अस्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह सुंदर काव्य प्रीति का और कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट और अदृष्ट फल वाला होता है, उद्धरण चिन्ह बंद। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, उद्धरण चिन्ह वामन ने विस्तार में न जाकर काव्य के प्रयोजन केवल दो माने हैं, दृष्ट प्रयोजन प्रीति आनंद और अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति। उन्होंने अपने स्तर को न तो धर्म और मोक्ष जैसे परम पुरुषार्थों तक ऊंचा उठाया है और न वे अर्थोपार्जन के निम्नतर स्तर तक ही उतरे हैं। उनकी वृत्ति से प्रतीत होता है कि साधारणतः कीर्ति कवि की सिद्धि और आनंद पाठक का प्राप्य है, तथापि मूलतः इन दोनों की व्यवस्था कवि और पाठक दोनों के लिए ही की गई है, उद्धरण चिन्ह बंद। निसंदेह डॉक्टर नगेंद्र की इस व्याख्या से वामन का पक्ष बहुत सबल हो जाता है, किंतु फिर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि किसी अन्य व्यक्ति की रचना से पाठक को कीर्ति किस प्रकार मिल सकती है। हमारे विचार से वामन ने अपना मत केवल कवि के दृष्टिकोण से ही व्यक्त किया है, क्योंकि उसे काव्य रचना करते समय आनंद प्राप्त होता है तथा उसके पश्चात कीर्ति मिलती है। काव्य प्रयोजन संबंधी उपर्युक्त उल्लेख के अनंतर वामन ने यह भी लिखा है कि काव्य रचना की प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति की सरणी मानी जाती है। अतः कीर्ति को प्राप्त करने के लिए और अकीर्ति के विनाश के लिए श्रेष्ठ कवियों को काव्यालंकार सूत्र का अर्थ भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए। इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि वामन ने कवि के दृष्टिकोण से ही काव्य प्रयोजन पर विचार किया था, पाठक के दृष्टिकोण से नहीं। अस्तु, आचार्य वामन के काव्य संबंधी दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत करें तो कह सकते हैं, एक, काव्य की रचना गुणों और अलंकारों से परिष्कृत एवं सज्जित भाषा में होनी चाहिए। दो, गुणों और अलंकारों से ही काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह सौंदर्य या सौंदर्य उत्पन्न करने की विधि रीति ही काव्य की आत्मा है। तीन, सौंदर्य के कारण ही पाठक काव्य को पसंद करता है तथा उसी से कवि को आनंद व कीर्ति की उपलब्धि होती है। एक शब्द में, सौंदर्य ही वामन के सारे दृष्टिकोण एवं उसकी समस्त मान्यताओं का मूलाधार है। वामन का विवेचन सर्वथा दोष शून्य एवं तर्क संगत चाहे न हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने कला के प्रति सच्चे सौंदर्यवादी दृष्टिकोण को अपनाकर उसके साथ न्याय करने का पूरा प्रयत्न किया है। रीत के आधारभूत तत्व। जैसा कि हमने पीछे स्पष्ट किया, वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी था, अतः उन्होंने उन सब गुणों को जिनसे काव्य सौंदर्य की सृष्टि हो सकती है रीत के आधारभूत तत्वों के रूप में संकलित किया है। किंतु यदि किसी वस्तु में गुणों के साथ साथ दोष विद्यमान हो तथा उसमें उचित साज सज्जा का अभाव हो तो वहाँ गुण भी प्रभावहीन हो जाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वामन ने एक और यह स्पष्ट किया है कि सौंदर्य दोषों के त्याग तथा गुणों और अलंकारों के योग से उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने ग्रंथ में गुण, दोष और अलंकार का निरूपण विस्तार से अलग अलग अध्यायों में किया। प्रायः हिंदी के अनेक विद्वान रीत सिद्धांत की चर्चा करते समय केवल गुणों तक ही अपना विषय सीमित रखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दोष और अलंकार भी सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। अस्तु, हम यहाँ तीनों का ही क्रमशः विवेचन करते हुए इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। कानूप एक, गुण। यद्यपि गुणों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने का श्रेय वामन को ही है, किंतु इनकी कल्पना इन्होंने अपने मस्तिष्क से नहीं की। उनसे पूर्व अनेक आचार्य इनकी चर्चा कर चुके थे। आचार्य भरत ने दोषों के विपर्य रूप ऐसे तत्वों को जो काव्य शैली को समृद्ध करते हैं गुण माना था। इन गुणों की गणना भी उन्होंने इन प्रकार से की थी, एक, श्लेष, दो, प्रसाद, तीन, समता, चार, समाधि, पाँच, माधुर्य, छह, ओज, सात, पद सौकुमार्य, आठ, अर्थव्यक्ति, नौ, उदारता और दस, कांति। आगे चलकर दंडी ने भी 10 गुणों की विस्तृत विवेचना की है, किंतु उसका कोई सामान्य लक्षण निर्धारित नहीं किया। वस्तुतः गुणों का लक्षण स्पष्ट भी सर्वप्रथम वामन ने ही किया। उनके विचार से काव्य के शोभाकारक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा। स्पष्ट ही यह लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार वे सारे तत्व जिसमें से कि काव्य सौंदर्य की सृष्टि होती है गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर वामन को उसी से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने उन्हें काव्य के स्थायी तत्व घोषित कर दिया, अर्थात जहाँ काव्य है वहाँ गुण अवश्य है और जहाँ गुण नहीं वहाँ काव्य भी नहीं। ऐसी स्थिति में गुणों की गणना संभव नहीं थी, किंतु वामन ने उनकी संख्या 20 निश्चित कर दी, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। वस्तुतः है 20 गुण आचार्य भरत के द्वारा उल्लिखित 10 गुण ही हैं। वामन ने केवल शब्द और अर्थ का भेद करके उनकी संख्या को द्विगुणित कर दिया। कहना न होगा कि वामन के परवर्ती विद्वानों ने भी इस संख्या विस्तार में अपनी रुचि प्रदर्शित की है, जैसे कि भोजराज ने गुणों की संख्या 72 तक पहुंचा दी, किंतु यह संख्या वृद्धि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, अतः हम अपना विवेचन वामन तक ही सीमित रखेंगे। वामन द्वारा निरूपित गुणों का परिचय संक्षेप में स्वयं उन्हीं के दृष्टिकोण से इस प्रकार दिया जा सकता है। क, शब्द गुण। एक, ओज, गाढ़ बंधत्व मोजह, अर्थात रचना की गाढ़ता या गाढ़ बंधत्व ओज गुण कहलाता है। दंडी ने इसके संबंध में लिखा है कि जब वाक्यों में समास युक्त पदों की बहुलता होती है तो ओज गुण का उदय होता है। हमारे विचार से वामन का भी अभिप्राय संश्लिष्ट शब्द रचना से ही था। दो, प्रसाद, शैथिल्यम प्रसादः, अर्थात रचना के शिथिलता ही प्रसाद गुण है। तीन, श्लेष, मसृणत्वम श्लेषः, अर्थात मसृणत्व या कोमलता को श्लेष कहते हैं। चार समता, मार्गाभेद समता, अर्थात मार्ग का अभेद या शैली की एक रूपता समता गुण है। पाँच समाधि, आरोहावरोह क्रम समाधि, अर्थात शैली में उतार चढ़ाव ही समाधि है। छह माधुर्य, पृथक पदत्वम माधुर्यम, शब्दों की पृथकता ही माधुर्य गुण है। सात सौकुमार्यम, अजरठत्वम सौकुमार्यम, अर्थात कठोरता का अभाव ही सौकुमार्य है। आठ उदारता, विकटत्वम उदारता, अर्थात रचना शैली की विकटता ही उदारता कहलाती है। नौ अर्थव्यक्ति, अर्थत्व अर्थव्यक्ति हेतुत्व मर्थव्यक्ति, अर्थात वह गुण जिससे अर्थ के स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है अर्थव्यक्ति कहलाता है। दस कांति, औज्वल्यम कांति, अर्थात रचना शैली की उज्ज्वलता या नवीनता का नाम ही कांति है। शब्द गुणों की उपर्युक्त सूची बड़ी विचित्र सी है। पहले हम देखते हैं कि वामन ने रचना के गंभीर बंधत्व को ओजगुण माना है, तो आगे उसके सर्वथा विरोधी गुण रचना की शिथिलता को भी उसने प्रसाद गुण मान लिया है। एक ओर वे शैली की एक रूपता को समता गुण मानते हैं, तो दूसरी ओर वे शैली के उतार चढ़ाव को भी गुण मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई गुण ऐसे भी हैं जिनके नाम और अर्थ में परस्पर संगति नहीं बैठती। उदाहरण के लिए श्लेष, माधुर्य, उदारता आदि गुण ऐसे ही हैं। वस्तुतः स्वयं वामन को भी इन असंगतियों का थोड़ा आभास हो गया था, अतः उन्होंने प्रथम असंगति के निराकरण का प्रयास भी किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ख अर्थगुण, जिन दस शब्द गुणों की चर्चा अभी हमने की है वे ही दस अर्थगुण भी हैं। उनकी संख्या और नाम में कोई अंतर नहीं है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से की गई है। जहाँ शब्द गुणों में रचना के प्रगाढ़ बंधन को ओज कहा गया है, वहाँ अर्थ गुणों में अर्थ की प्रौढ़ता को ओज गुण माना गया है। अर्थस्य प्रौढ़िरोज, इसी प्रकार अर्थ की विमलता को प्रसाद, क्रमिक घटना को श्लेष, अर्थ की सुगमता को समता, अर्थ के दर्शन को समाधि, उक्ति वैचित्र को माधुर्य, अर्थ की सुकुमारता को सौकुमार्य, अग्रामत्य को उदारता, वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता को अर्थव्यक्ति तथा रस की दीप्ति को कांति गुण कहते हैं। कहना न होगा कि शब्द गुणों की ही भांति अर्थ गुणों में से भी अनेक अस्पष्ट एवं असंगत हैं। फिर यह भी विचित्र सा है कि अर्थ गुणों का शब्द गुणों से कोई साम्य न होते हुए भी उन्हें वे ही नाम दिए गए हैं जो कि शब्द गुणों के लिए आधारित थे। क्या वामन के शब्दकोश में नए नामों का भी अभाव था? फिर क्या उन्होंने अपने इन गुणों के छोटे छोटे प्यालों में परंपरागत काव्य शास्त्रों के बड़े बड़े उदधियों को समेट लेने का दुस्साहस किया है? कहाँ रस सिद्धांत के विभिन्न अंगों, अवयवों, भेदों एवं उपभेदों का विशाल सागर और कहाँ वामन का नन्हा सा कांति गुण? दोनों में पहाड़ और तिल का अंतर है, किंतु वामन ने यह समझ लिया कि रसदीप्ति की कांति गुण बता देने से ही समस्त रस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। खैर, इससे इतना तो सिद्ध ही है कि अंततः वामन रस सिद्धांत के पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सके, उसे उन्हें किसी न किसी रूप में अपनाना ही पड़ा। दो दोष, नीति का दूसरा महत्वपूर्ण आधार दोष है। जब तक कोई भी रचना दोष शून्य नहीं होगी, तब तक उसमें गुणों का समन्वय भी सौंदर्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। अतः साहित्यकारों के लिए दोषों का ज्ञान भी उतना ही अपेक्षित है जितना गुणों का। काव्यगत दोषों की चर्चा वामन से पूर्व भरत, भामह और दंडी भी कर चुके थे, किंतु उनकी कोई सामान्य परिभाषा किसी ने नहीं दी। वामन के अनुसार दोष की परिभाषा है गुण विपर्यात्मानो दोष, अर्थात गुण के विपर्यय का नाम दोष है, या यूं कहिए कि जो गुण का उल्टा है वही दोष है। दोषों की संख्या के संबंध में भी विभिन्न आचार्यों में प्रायः मतभेद रहा है। आचार्य भरत ने 10 दोष माने थे। एक गूढ़ार्थ यानी क्लिष्ट अर्थ, दो अर्थांतर अर्थात अवर्ण का वर्णन, तीन अर्थहीन, चार भिन्नार्थ, पाँच एकार्थ कोष्टक में एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग, छह अभिप्लुतार्थ विभिन्न अर्थों में अनुवृत्ति का अभाव, न्यायादपेत तर्करहित, आठ विषम छंदोभंग, नौ विसंधि संधि का अभाव, दस शब्दहीन हीन शब्दों का प्रयोग। आगे चलकर भामह ने इनकी संख्या 21 तथा दंडी ने 10 मानी है, जबकि वामन ने इन्हें चार भेदों पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष में वर्गीकृत करते हुए इनकी संख्या 20 मानी है। उनके द्वारा निरूपित दोषों की सूची इस प्रकार है। क पांच पद दोष, एक असाधु व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग, दो कष्ट कर्ण कटु शब्द, तीन ग्राम में, चार अप्रतीत अप्रचलित शब्द का प्रयोग, पाँच अनर्थक निरर्थक। ख पांच पदार्थ दोष, एक अनर्थ जहाँ शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग हो, दो न्यार्थ जिसका अर्थ कल्पना से लगाना पड़ता हो, तीन गुणार्थ अप्रसिद्धार्थ, चार अश्लील, पांच क्लिष्ट जहाँ अर्थ अत्यंत दूरारूढ़ हो। ग तीन वाक्य दोष, एक भिन्न वृत्ति, दो यति भ्रष्ट, तीन विसंधि। घ सात वाक्यार्थ दोष, एक व्यर्थ पूर्वापर विरोधी, एक अर्थ जिसमें एक ही अर्थ की आवृत्ति हो, तीन संदिग्ध, चार अप्रयुक्त, पांच अपक्रम जहां अर्थ में क्रम न हो, छह अलोक जिसका अर्थ देश काल अप्रवृत्ति के विरुद्ध हो, सात विद्या विरुद्ध जिसका अर्थ कला और शास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो। यदि वामन ने दोष विवेचन में भी विचार की प्रवृत्ति का परिचय दिया है किंतु फिर भी उसमें उनको पर्याप्त सफलता मिली है, उनका वर्गीकरण और विवेचन पर्याप्त स्पष्ट संगत एवं महत्वपूर्ण है। निसंदेह हमारी दृष्टि में उनका दोष दर्शन अधिक गुणवान है जबकि उनका गुण विवेचन सर्वथा दोषपूर्ण है। तीन अलंकार। गुण और दोष के अनंतर अब हम रीति के तीसरे महत्वपूर्ण अंग अलंकार को लेते हैं। यहाँ एक शंका का निराकरण कर देना चाहिए, वह यह है कि क्या वामन अलंकार को ही मान्यता देते थे? यदि ऐसा था तो फिर रीति संप्रदाय को अलंकार संप्रदाय से पृथक कैसे माना जा सकता है? इन शंकाओं के संबंध में हमारा समाधान यह है कि वामन अपने सिद्धांत को नवीन एवं स्वतंत्र घोषित करते हुए भी अलंकार की उपेक्षा नहीं कर सके। यही नहीं, उन्होंने एक स्थान पर तो अलंकार को व्यापक अर्थ में, सौंदर्य के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसे ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व मान लिया है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, किंतु साथ ही अलंकार को उसके संकुचित अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए वे लिखते हैं कि काव्य में सौंदर्य दोषों के अभाव व गुण और अलंकारों के योग से उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि वामन चाहे अलंकारवादी न हो किंतु अलंकार के महत्व को भी अवश्य स्वीकार करते थे। पर इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि वे अलंकारों को उतना ही महत्व देते थे जितना कि स्वयं अलंकारवादी भामह दंडी आदि देते थे। नहीं, यह बात नहीं है। जब अलंकारवादी अलंकार को काव्य का स्थायी नित्य व आवश्यक अंग मानते हैं, वह वामन उनका काव्य से अनित्य संबंध मानते हैं। वे सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते अपितु सौंदर्य में, यदि वह पहले से ही है तो केवल अभिवृद्धि कर सकते हैं। सौंदर्य को उत्पन्न करने की शक्ति तो वामन के विचार से गुणों में ही है। अतः निश्चित रूप से रीति संप्रदाय में अलंकारों का स्थान गुणों के अनंतर ही है। वे उनसे हीन माने जाते हैं। यहाँ हमें यह भी न भूलना चाहिए कि जैसा व्यवहार वामन ने अलंकारों के साथ किया है, लगभग वैसा ही अलंकारवादियों ने गुणों के साथ किया है। अर्थात ये गुणों को मानते हैं किंतु उन्हें अलंकारों से हीन समझते हैं। खैर, यह इन दोनों का आपस का झगड़ा है, हम बीच में क्यों पड़े। अलंकारों के विवेचन में वामन ने प्रायः पूर्वागत परंपरा का ही अनुसरण किया है। यह दूसरी बात है कि उनकी संख्या में परिवर्तन करके तथा उनके नए वर्गीकरण के द्वारा उन्होंने अपनी किंचित मौलिकता का ही परिचय दिया है। पहले उन्होंने सब अलंकार को दो वर्गों में विभाजित किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में उन्होंने केवल यमक और अनुप्रास को ही मान्यता दी है, शेष को इन्हीं के भेदों के रूप में स्थान दिया है। अर्थालंकार में से उन्होंने उपमा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए इसका विवेचन अलग पूरे अध्याय में किया है तथा अगले अध्याय में लगभग 28-29 अर्थालंकारों का ही उपमा के विभिन्न रूपों में निरूपण किया है। वस्तुतः वामन का अलंकार संबंधी विवेचन भी पर्याप्त तर्कसंगत एवं प्रौढ़ है। रीत के प्रकार। जैसा कि हमने आरंभ में उल्लेख किया था, आचार्य वामन ने रीत के तीन भेद किए हैं, एक वैदर्भी, दो गौड़ी और तीन पांचाली। वैदर्भी के संबंध में उनकी धारणा है समग्र गुणा वैदर्भी, अर्थात जिनमें सारे गुण हो वह वैदर्भी है। गौड़ी में केवल ओज और कांति ये दो गुण होते हैं तथा इसी प्रकार पांचाली में भी माधुर्य और सौकुमार ये दो गुण रहते हैं। इस प्रकार गुणों की संख्या के आधार पर वामन ने वैदर्भी को ही स्वीकार बताया है, शेष दो तो उपेक्षणीय है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो रचना सभी गुणों से संपन्न हो वही वैदर्भी ही काव्य है, शेष का कोई महत्व नहीं। ऐसी स्थिति में इस वर्गीकरण का लाभ ही क्या है? फिर कोई रचना ऐसी भी हो सकती है जिसमें दो के स्थान पर चार या आठ गुण हों, उन्हें रीतिवादी कहाँ स्थान देंगे? वस्तुतः वामन के इस वर्गीकरण में अनेक असंगतियाँ एवं दोष विद्यमान हैं जिन पर आगे इस संप्रदाय के महत्व पर विचार करते समय प्रकाश डाला जाएगा। उपर्युक्त वर्गीकरण के नामकरण के संबंध में भी एक शंका उठ सकती है कि इन रीतियों का विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों विदर्भ गौड़ पांचाल से क्या संबंध है। इसका समाधान करते हुए स्वयं वामन ने लिखा है, यह बात नहीं कि रीतियों का देश विशेष से संबंध हो। देश विशेष से द्रव्य गुण या काव्य गुणों की उत्पत्ति नहीं होती और न इस कारण रीतियों के नाम देशों के नाम पर रखे गए हैं, अपितु जिन जिन देशों के लोगों ने जिस जिस प्रकार की रचना शैलियों का आविष्कार किया है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। फिर भी देशों का काव्य शैलियों से सीधा कोई संबंध नहीं है। यद्यपि इस प्रकार वामन ने समाधान करने का प्रयत्न किया है, किंतु उनके कथन में स्वतो व्याघात दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण उसमें सफलता नहीं मिलती। यही कारण है कि आगे चलकर कुंतल ने वैदर्भी गौड़ी और पांचाली के स्थान पर क्रमशः सुकुमार विचित्र तथा मध्यम मारी की कल्पना की, जो अधिक तर्कसंगत है। रीति और अन्य भारतीय संप्रदाय। यदि अन्य भारतीय काव्य संप्रदायों से तुलना की दृष्टि से रीति सिद्धांत पर विचार करें तो इसका महत्व उनकी अपेक्षा न्यून ही सिद्ध होता है। जहाँ रस सिद्धांत काव्य में भावात्मकता को प्रश्रय देता है, उसे एक अत्यंत गंभीर एवं उदात्त स्वरूप प्रदान करता है, वहाँ रीति संप्रदाय काव्य के केवल बाह्य पक्ष या शैली पक्ष की ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। रीति सिद्धांत में जिन गुणों को आधार बनाया गया था वे भी रस सिद्धांति आचार्य भरत से ही उधार लिए हुए थे, किंतु इस थोड़ी सी पूंजी के बल पर ही काव्यशास्त्र का पूरा भवन खड़ा करना बहुत कठिन था। इसी प्रकार अलंकार संप्रदाय के हिरण से वामन मुक्त नहीं कहे जा सकते। गुणों की अपेक्षा अलंकारों को हीन सिद्ध करने का जो प्रयास वामन ने किया उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी वामन शैली पक्ष को ही महत्व देने के कारण रस सिद्धांत की अपेक्षा अलंकार सिद्धांत के अधिक समीप पड़ते हैं। वक्रोक्ति और ध्वनि की अपेक्षा भी रीति का क्षेत्र अधिक संकीर्ण है। जहाँ कुंतक ने वक्रोक्ति के अंतर्गत काव्य के सूक्ष्मात सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके दीर्घतम रूप की चर्चा अत्यंत स्पष्टता से की है, वहाँ वामन की सारी शक्ति गुणों के स्पष्ट विवेचन एवं अलंकार एवं दोषों के संग्रह में ही लग गई है। फिर भी विशुद्ध सौंदर्यवादी होने के नाते उनका आधारभूत दृष्टिकोण कुंतक के दृष्टिकोण से बहुत कुछ मिलता है। ध्वनि संप्रदाय की तुलना में भी रीति संप्रदाय अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। ध्वनि संप्रदाय ने रस अलंकार आदि को सम्मान पूर्वक अपनाकर अपने गौरव को स्थायी बनाने का प्रयत्न किया, जबकि रीति के प्रवर्तक ने रस और अलंकार को हेय स्थान देने का प्रयत्न किया। वस्तुतः ध्वनि मत की सूक्ष्मता एवं व्यापकता के साथ रीति की कोई तुलना नहीं। रीति और पाश्चात्य शैली। भारतीय रीति की ही भांति पाश्चात्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भी शैली की विवेचना बराबर होती रही है। यद्यपि अब शैली का अर्थ रीति से भिन्न हो गया है, किंतु प्राचीन युग में दोनों का विवेचन एवं वर्गीकरण जिस ढंग से हुआ है उसमें परस्पर गहरा साम्य दृष्टिगोचर होता है। प्रसिद्ध ग्रीक आचार्य प्लेटो ने शैली के तीन भेद किए थे, सहज, सरल, विचित्र और मिश्र। कहना न होगा कि यह वर्गीकरण रीति के भेदों से मिलता जुलता है। इसी प्रकार अरस्तु ने शैली के दो मूल गुण बताए थे, स्पष्टता और औचित्य। साथ ही उन्होंने एक अन्य स्थान पर शैली के चार दोषों का आख्यान किया, एक समासों का अधिक प्रयोग, दो अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, तीन दीर्घ अनुपयुक्त तथा अधिक विशेषणों का प्रयोग, चार दुरारूढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग। अरस्तु के ये दोष भारतीय आचार्यों के दोष निरूपण के अनुकूल ही हैं। उपर्युक्त आचार्यों के अतिरिक्त और भी अनेक पाश्चात्य आचार्यों ने शैली का विवेचन रीति से मिलता जुलता किया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के रोमन विद्वान सिसरो ने शैली के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत इन चार गुणों की गणना की है, एक उपयुक्त शब्द चयन, तीन दो स्पष्टता, तीन सामंजस्यपूर्ण पद रचना और चार वर्ण गुंफन अर्थात स्वर और व्यंजनों की मधुर योजना। आगे चलकर डायोनिसियस ने भी शैली के तीन प्रमुख गुणों शुद्धता, स्पष्टता और समास तथा अनेक गौण गुणों सजीवता, उदात्तता, गरिमा, शक्ति, शोभा आदि का आख्यान करते हुए उनके तीन भेद किए हैं, कठिनोदात, मश्रण या सज्जित और मिश्र। क्विंटिलियन ने भारतीय आचार्यों की भांति शैलियों का नामकरण भी भौगोलिक आधार पर किया, जैसे एटिक, एशियाटिक और रहोडियन। पंडित बलदेव उपाध्याय ने तीनों को क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली के समकक्ष रखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैली संबंधी प्राचीन पाश्चात्य विवेचन भारतीय रीति के सर्वथा अनुकूल है, किंतु आधुनिक युग तक आते आते पाश्चात्य विद्वानों के शैली संबंधी दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर आ गया। 19वीं शताब्दी में वर्ड्सवर्थ तथा अन्य स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों ने सहज स्वाभाविक शैली के पक्ष में प्रचार किया तथा चेष्टापूर्वक प्रयुक्त शैली को साहित्य के लिए अनुपयुक्त सिद्ध किया। दूसरी ओर क्रोचे के अभिव्यंजनावाद ने भी सहज स्वाभाविक अभिव्यंजना को ही काव्य के लिए वांछनीय सिद्ध किया। वस्तुतः उनके विचार से तो शैली की पृथक सत्ता मानना ही अनुचित है। पेटर और रैले ने भी शैली का संबंध मस्तिष्क और आत्मा से बताते हुए उसे रचयिता के व्यक्तित्व का अविच्छेद्य अंग माना। इस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली व्यक्ति सापेक्ष हो गई, अर्थात हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है, इस तथ्य को मान लिया गया। ऐसी स्थिति में शैली का सामान्य रूप निश्चित करना स्वतः ही अनावश्यक हो गया। यद्यपि भारतीय विद्वानों में से भी अनेक ने शैली को व्यक्ति सापेक्ष माना है, फिर भी उन्होंने उसके सामान्य गुणों की उपेक्षा नहीं की। अस्तु, आज की शैली संबंधी मान्यताओं में रीति के निम्नांकित भेद मिलते हैं। एक, रीति के कुछ निश्चित भेद किए जा सकते हैं, जबकि शैली का कोई निश्चित रूप या भेद निर्धारित करना कठिन है। दो, रीति विषय सापेक्ष है, जबकि शैली व्यक्ति सापेक्ष। तीन, रीति में पाठक या सामाजिक दृष्टि को प्रमुखता प्राप्त है, जबकि शैली में कवि या रचयिता की दृष्टि को। चार, रीति में पाठक या सामाजिक की दृष्टि को प्रमुखता प्राप्त है, जबकि शैली में कवि या रचयिता की दृष्टि को। यह तीन का दोहराव हो गया। चार, रीति के लिए अध्ययन, अभ्यास एवं प्रयत्न अपेक्षित है, जबकि शैली सहज स्वाभाविक रूपों को सूचित करती है। पाँच, रीति परंपरा की प्रतीक है, जबकि शैली स्वच्छंदता की। रीति संप्रदाय का महत्व। रीति संप्रदाय और उसके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने के अनंतर अब हम अपने दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि रीति सिद्धांत ने भारतीय काव्यशास्त्र को क्या कुछ नया दिया। क्या वामन के ग्रंथ के कारण काव्य की आत्मा संबंधी समस्या के समाधान में कोई सहायता मिली? इन प्रश्नों के उत्तर में यह निसंकोच कहा जा सकता है कि वामन ने जो कुछ दिया वह उनका अपना नहीं है। जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, उनके सिद्धांत मुख्यतः गुण, दोष और अलंकारों पर आधारित हैं और ये तीनों ही पूर्व विद्वानों द्वारा विवेचित हैं। उनका गुण दोषों का विवेचन तो बहुत कुछ भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित है, जबकि अलंकार संबंधी सारी सामग्री भामह और दंडी से ली हुई है। इस क्षेत्र में वामन की मौलिकता यह है कि एक तो उन्होंने गुण और दोषों का शब्द और अर्थ आदि के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया तथा दूसरे उन्होंने गुणों को अलंकार से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु उनका गुणों का विवेचन इतना अधिक स्पष्ट है कि उनके प्रयास को सफल नहीं माना जा सकता। रीतियों का वर्गीकरण भी वामन का सर्वथा अपना नहीं है। जैसा कि आरंभ में कहा जा चुका है, वामन से पूर्व ही वैदर्भी एवं गौड़ी मार्ग का भेद प्रचलित हो चुका था, अतः उसमें एक नया भेद और बढ़ा देना कोई अधिक महत्व की बात नहीं है। हाँ, रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने का साहस अवश्य ही अपने आप में अद्भुत है, पर यहाँ भी वे बड़ी भारी दुविधा में पड़ गए। एक ओर वे सौंदर्य को ही काव्य का प्रमुख गुण घोषित कर बैठे तो दूसरी ओर वे रीति को उसकी आत्मा मान बैठे। काव्य में सौंदर्य ही साध्य होता है, रीति तत्व तो उसका साधन मात्र है, किंतु उन्होंने साधन को साध्य से भी अधिक महत्व दे डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न रीतियों का क्षेत्र विभाजन ही भलीभांति नहीं किया, वैदर्भी को 10 गुणों वाली तथा शेष को 2-2 गुणों वाली घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ 2 से लेकर 9 तक गुण हो, उन्हें कौन सी रीति में स्थान दिया जाए, इसका निर्णय करना असंभव है। दूसरे, वैदर्भी के 10 गुणों में भी परस्पर विरोध हैं, जैसे ओज और माधुर्य। ऐसी स्थिति में उन सबको एक स्थान पर कैसे एकत्रित किया जा सकता है? साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि वामन ने जिन गुणों की गणना की है, केवल उन्हीं के आधार पर किसी रचना में काव्यत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, विज्ञान की पुस्तक भी सरल, स्पष्ट एवं गंभीर शैली में लिखी जा सकती है, किंतु इससे उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वामन का गुण संबंधी दृष्टिकोण पर्याप्त असंगत है, अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक है। यदि वामन को कहीं सफलता मिली भी है तो वह उनके ग्रंथ के अलंकार एवं दोष संबंधी अंश से है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत को समझने समझाने की ही बात है, वामन उसमें पर्याप्त कुशल हैं, किंतु ज्यों ही वे कुछ नया कहने का प्रयास करते हैं, वहीं वे अस्पष्ट एवं दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। अस्तु, आचार्य वामन के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होते हुए भी हम उनकी देन को बहुत बड़ी न मानने के लिए विवश हैं। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने एक नए संप्रदाय के प्रवर्तन का साहस किया, अल्प शक्ति के बल पर ही महान कार्य करने का प्रयास किया। उनकी रीति काव्य की आत्मा भले ही न बन जाए, किंतु उसका काव्य से कोई न कोई संबंध तो है ही। कम से कम जो लोग शैली पक्ष की सर्वथा उपेक्षा करते हैं उनके लिए तो वामन का मत चेतावनी देने के लिए पर्याप्त है। अतः डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है, उद्धरण चिन्ह, वाणी के बिना अर्थ गूंगा है। शैली के अभाव में भाव उस कोकिल के समान असहाय हैं जिसे विधाता ने हृदय की मिठास देकर भी रसना नहीं दी। इस दृष्टि से शैली तत्व की अनिवार्यता असंदिग्ध है और रीतिवाद ने उस पर बल देकर काव्य शास्त्र का निःसंदेह ही उपकार किया है। इस प्रकार रीति संप्रदाय और उनके सिद्धांत शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।